सुजीत कुमार की आवाज में मौर्य राजवंश की रिकॉर्डिंग होने जा रही है। इसका शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक का है। मौर्य इतिहास के साधन। मौर्य राजवंश तथा उसके शासनकाल का इतिहास जानने के लिए हमें साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों ही साधनों से पर्याप्त सहायता उपलब्ध होती है। इनका विवरण इस प्रकार है। साहित्य। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नाटक आदि प्रमुख हैं। इनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है, जिसके अध्ययन से हम प्रथम मौर्य सम्राट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी प्रायः सभी उपयोगी बातें ज्ञात कर लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधिवंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख हैं भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं के विषय में ज्ञात होता है। इन सभी का उल्लेख यथास्थान किया जाएगा। विदेशी विवरण। क्लासिकल यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स नाम का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का तादम्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था। इससे यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन लेखकों नियार्क्स, आनेसिक्रिप्स तथा ऑस्टियोबुलस के विवरण चंद्रगुप्त के विषय में कुछ सूचनाएं देते हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसका विदेशी विवरण में वही महत्व है जो भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र का है। दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। इसके अंश उद्धरण के रूप में परवर्ती लेखकों के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इनमें स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क तथा जस्टिन के नाम उल्लेखनीय हैं। पुरातत्व। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्व अशोक के लेखों का है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विरुद्ध भागों से अब प्रकाश में आ चुके हैं। ये लेख वस्तुतः उसके चरित काव्य हैं, जिनमें हम अशोक के शासन की प्रायः समस्त घटनाओं का प्रमाणिक विवरण प्राप्त कर लेते हैं। भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। अशोक के लेखों का परिचय परिशिष्ट के अंतर्गत दिया गया है। अशोक के लेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख भी मौर्य इतिहास के विषय में कुछ सूचनाएं प्रदान करता है। इससे सौराष्ट्र प्रांत में मौर्य शासन की जानकारी मिलती है। इस प्रकार साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व ये तीनों ही साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान सामग्रियां सुलभ कराते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें मौर्य काल से ही मिलने लगता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के उन महानतम सम्राटों में से हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा कृतियों से इतिहास के पृष्ठों में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किया है। उसका उदय वस्तुतः इतिहास की एक रोमांचकारी घटना है। देश को मकदूनी दास्ता से मुक्त करने तथा दंडों के घृणित तथा अत्याचारपूर्ण शासन से जनता को तृण दिलाने और देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने का श्रेय इसी ख्यातनामा मौर्य सम्राट को प्राप्त है। उत्पत्ति। भारतीय इतिहास के अनेक महान व्यक्तियों के समान चंद्रगुप्त मौर्य का वंश भी अंधकारपूर्ण है। उसकी उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण मिलते हैं। फलस्वरूप उसकी जाति का निर्धारण भारतीय इतिहास की एक जटिल समस्या है। ब्राह्मण ग्रंथ उसे एक स्वर में शूद्र अथवा निम्न कुल से संबंधित करते हैं, जबकि बौद्ध तथा जैन ग्रंथ उसे क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। यहाँ हम उसकी उत्पत्ति विषयक विभिन्न मतों की आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। ब्राह्मण साहित्य का साक्ष्य। ब्राह्मण साहित्य में सर्वप्रथम पुराणों का उल्लेख किया जा सकता है। पुराण नंदों को शूद्र कहते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि शेषुनाग वंशी शासक महानंदी के पश्चात शुद्र योनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे। कुछ विद्वानों ने इसे कथन के आधार पर मौर्यों को शुद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है। विष्णु पुराण के एक भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया है। उनके अनुसार मुरा की संतान होने के कारण ही वह मौर्य कहा गया। दूसरा प्रमाण विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक से लिया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है, किंतु इसमें जो विवरण मिलता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त नंदराज का वैध पुत्र नहीं था, क्योंकि नाटक में ही नंदवंश को चंद्रगुप्त का पितृकुलभूत अर्थात पितृकुल बनाया गया है। यदि पद उल्लिखित है, यदि चंद्रगुप्त नंदराज का वैध पुत्र होता तो उसके लिए पितृकुल का प्रयोग मिलता। पुनश्च एक स्थान पर लिखा गया है कि नंदराज का समूल नष्ट हो गया। यदि चंद्रगुप्त नंदराजा का वास्तविक पुत्र होता तो उसके बचे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह नाटक नंदों को उच्च कुल तथा चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। शूद्र उत्पत्ति के समर्थक विद्वानों ने इन दोनों शब्दों को शूद्र जाति के अर्थ में ग्रहण किया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी के मुद्रा राक्षस के एक टीकाकर धुंडीराज ने चंद्रगुप्त को शूद्र सिद्ध करने के लिए एक अनोखी कहानी गढ़ी है। उसके अनुसार सर्वार्थ सिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा को की दो पत्नियां थीं, सुनंदा तथा मुरा। सुनंदा एक क्षत्राणी थी जिसके 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहे गए। मुरा शूद्रा थी, उसका एक पुत्र हुआ जो मौर्य कहा गया। 11वीं शताब्दी ईस्वी के 2 संस्कृत ग्रंथों सोमदेवकृत कथा सरिता सागर तथा क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त की शूद्र उत्पत्ति के विषय में एक भिन्न विवरण मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार नंदराज की अचानक मृत्यु हो गई तथा इंद्रदत्त नामक एक व्यक्ति योग के बल पर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया तथा राजा बन बैठा। तत्पश्चात वह योग नंद के नाम से जाना जाने लगा। उसने नंदराज की पत्नी से विवाह कर लिया जिससे उसे हिरण्यगुप्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु वास्तविक नंदराजा को पहले से ही चंद्रगुप्त नामक एक पुत्र था। योगनंद अपने तथा अपने पुत्र हिरण्यगुप्त के मार्ग में चंद्रगुप्त को बाधक समझता था, जिससे दोनों में वैमनस्य होना स्वाभाविक था। वास्तविक नंदराजा के मंत्री शक्टार ने चंद्रगुप्त का पक्ष लिया। चाणक्य नामक ब्राह्मण को अपनी ओर मिलाकर उसकी सहायता से शक्टार ने योगनंद तथा हिरण्यगुप्त का अंत कर दिया तथा राज्य का वैध उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त ही सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार इन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र मानकर उसकी शूद्र उत्पत्ति का मत व्यक्त किया गया है। शूद्र उत्पत्ति के मत की समीक्षा। यदि हम सावधानी पूर्वक उपर्युक्त मतों की समीक्षा करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि वे कल्पना पर अधिक आधारित हैं, ठोस तथ्यों पर कम। जहां तक पुराणों का प्रश्न है, वे चंद्रगुप्त की जाति के विषय में बिल्कुल मौन है। वे एक स्वर से नंदों को शूद्र कहते हैं तथा यह बताते हैं कि द्विज ऋषभ कौटिल्य सभी नंदों को मारकर चंद्रगुप्त को सिंहासन सीन करेगा। विष्णु पुराण का कथन केवल नंदों के ऊपर ही लागू होता है, न कि बाद के सभी राजवंशों पर। हमें निश्चित रूप से पता है कि नंदों के बाद के सभी राजवंश शूद्र नहीं थे। पुराणों का टीकाकार इतिहास तथा व्याकरण दोनों से अनभिज्ञ लगता है। पाणिनीय व्याकरण के नियमों के अनुसार मौर्य शब्द की उत्पत्ति पुलिंग मूर शब्द से होगी, मुरा शब्द से मौर्य बनेगा, मौर्य नहीं। मुद्रा राक्षस का साक्ष्य मौर्यों की जाति के विषय में प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। यह नाटक नंदों को उच्च वर्ण का बताता है जो भारतीय साहित्य तथा विदेशी विवरण के आलोक में विश्वसनीय नहीं है। जहां तक वृषल तथा कुलहीन शब्दों का प्रश्न है, इनके आधार पर भी हम चंद्रगुप्त को शूद्र नहीं मान सकते। मनुस्मृति तथा महाभारत में वृषल शब्द का प्रयोग धर्मच्युत व्यक्ति के लिए किया गया है। मनु के अनुसार भगवान धर्म को वृष कहते हैं जो पुरुष धर्म का नाश करता है। देवता उसे वृषल समझते हैं, अतः धर्म का नाश नहीं करना चाहिए। अन्यत्र मनु लिखते हैं कि क्षत्रिय जातियां क्रियाओं के लोप होने से तथा ब्राह्मणों को न देखने से वृषलत्व को प्राप्त हुई। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग अधिकांशतः चाणक्य द्वारा तथा एक स्थान पर राक्षस तथा दूसरे स्थान पर कंचुकी द्वारा किया गया है। चाणक्य इसे शूद्र अर्थ में कदापि प्रयुक्त नहीं कर सकता। वह चंद्रगुप्त को प्रेम पूर्वक ही वृषल कहता है। नाटक में ही एक स्थान पर इस शब्द का प्रयोग राजाओं में वृष अर्थात सर्वोत्तम राजा के अर्थ में मिलता है, अतः हम इसे शूद्र जाति का बोधक नहीं मान सकते। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। संभव है विशाखदत्त ने इसी कारण ब्राह्मण अद्व्यथा के पोषक चाणक्य के मुख से उसे विशल कहलाया हो। इसी प्रकार कुलहीन शब्द का प्रयोग सामान्य कुलोत्पन्न अर्थ में हो सकता है। इससे केवल इतना ही प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित नहीं था, किंतु इन शब्दों को लेकर इतनी खींचतान करने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती। वास्तविकता तो यह है कि समस्त नाटक की ऐतिहासिकता ही चंद्रगुप्त के संबंध में संदिग्ध है। इसकी रचना मौर्य काल के लगभग 8 शताब्दियों बाद की गई थी, अतः हम मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण में इसे प्रमाणिक नहीं मान सकते। मुद्रा राक्षस के टीकाकार ने जो कथा गढ़ी है वह पूर्णतया कपोल कल्पित है, जिसका कोई आधार नहीं प्रतीत होता। कथा सरिता सागर तथा बृहत कथा मंजरी काफी बाद की रचनाएं हैं, अतः मौर्य इतिहास के विषय में उन्हें भी प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। इन ग्रंथों में नंद, चंद्रगुप्त तथा चाणक्य के नाम के अतिरिक्त कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो चंद्रगुप्त को शूद्र सिद्ध करे। पुनश्च से ग्रंथ अनेक अनैतिहासिक कथाओं से परिपूर्ण है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त को शूद्र अथवा निम्न वर्ण से संबंधित करने के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वे सबल नहीं है, अतः हम उसे शूद्र नहीं मान सकते। बौद्ध साहित्य का साक्ष्य। ब्राह्मण परंपरा के विपरीत बौद्ध ग्रंथों का प्रमाण मौर्यों की क्षत्रिय जाति से संबंधित करता है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश का कहा गया है। ये मौर्य कपिलवस्तु के शाक्यों की ही एक शाखा थे। जिस समय कौशल नरेश विदुभ ने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया, शाक्य परिवार के कुछ लोग कौशल नरेश के अत्याचारों से बचने के लिए हिमालय के एक सुरक्षित क्षेत्र में आकर बस गए। यह स्थान मोरों के लिए प्रसिद्ध था, अतः यहाँ के निवासी मौर्य कहे गए। मौर्य शब्द मोर से ही निकला है, जिसका अर्थ है मोरों के प्रदेश का निवासी। एक दूसरी कथा में मौर्य नगर का उल्लेख हुआ है तथा यह बताया गया है कि यह नगर जिन ईंटों से निर्मित हुआ था उनकी बनावट मयूरों के गर्दन के समान थी, अतः इस नगर के निर्माता मौर्य नाम से प्रसिद्ध हुए। अनेक बौद्ध ग्रंथ बिना किसी संदेह के चंद्रगुप्त को क्षत्रिय घोषित करते हैं। महाबोधि वंश उसे राजकुल से संबंधित बताता है जो मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य नामक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न कहा गया है। महापरिबनाशुत में मौर्यों का को विपिप्लविन का शासक तथा क्षत्रिय वंश का कहा गया है। इसके अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद मौर्यों ने कुशीनारा के मल्लों के पास उनके अवशेषों का अंश प्राप्त करने के लिए राजदूत भेजकर अपने क्षत्रिय होने के आधार पर ही दावा किया था। महापरिनिबनाशुत प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है, अतः इसे अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है। जैन साहित्य का साक्ष्य। इसमें हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्रगुप्त को मयूर पुष्कों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। आवश्यक सूत्र की हरिभद्रिया टीका में भी चंद्रगुप्त को मयूर पुष्कों के ग्राम के मुखिया के कुल में उत्पन्न कहा गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जैन ग्रंथ नंदों को शूद्र बताकर उनकी निंदा करते हैं, जबकि वे मौर्यों को शूद्र उत्पत्ति का संकेत तक नहीं करते। इस प्रकार जैन तथा बौद्ध दोनों ही साक्ष्य मौर्यों को मयूर से संबंधित करते हैं। इस मत की पुष्टि अशोक के लौर्यानंद ग्रह के स्तंभ के नीचे के भाग में उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी हो जाती है। सर्वप्रथम ग्रुण वेडेल महोदय ने यह बताया था कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था। इसी कारण मौर्य युग की कलाकृतियों में मयूरों को का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। मार्शल का विचार है कि सांची के पूर्वी द्वार तथा अन्य भवनों को सजाने के लिए मोरों के चित्र बनाए जाते थे। सांची के विशाल स्तूप में भी मयूरों की कई आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है। विदेशी लेखकों के साक्ष्य। सिकंदर के उत्तरकालीन यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के संबंध में जो विवरण दिए हैं वे यहाँ विचारणीय हैं। यूनानी लेखक उसे एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स आदि नामों से जानते हैं। प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है कि जब वह युवक था तभी स्वयं सिकंदर से मिला था तथा बाद में कहा करता था कि सिकंदर बड़ी आसानी से संपूर्ण देश को जीत लिया होता, क्योंकि तत्कालीन नंद राजा अपने कुल की निम्नता के कारण जनता में अत्यधिक घृणित एवं अप्रिय था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रगुप्त यदि स्वयं निम्न कुलोत्पन्न होता तो वह नंदों के कुल के विषय में ऐसी बातें नहीं करता। जस्टिन हमें बताता है कि चंद्रगुप्त यद्यपि सामान्य कुलोत्पन्न था फिर भी दैवी प्रेरणावश सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। एक बार सेंड्रोकोट्स की स्पष्टवादिता से सिकंदर अप्रसन्न हो गया था। उसने उसे मार डालने का आदेश दिया। चंद्रगुप्त अपनी सतर्कता से बच निकला। इन विवरणों से मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि वह राज परिवार से संबंधित नहीं था। वर्ण निर्धारण। इन विविध प्रमाणों की आलोचनात्मक समीक्षा के पश्चात यह कहा जा सकता है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों का प्रमाण ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक संतोषजनक है। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ही था, उसे शूद्र अथवा निम्न जातीय सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजत्व का अधिकारी हो सकता है। अर्थशास्त्र में उसके एक स्थान पर बताया गया है कि दुर्बल व्यक्ति भी यदि उच्च वर्ण का हो तो वह निम्न कुलोत्पन्न बलवान व्यक्ति की अपेक्षा राजा होने के योग्य होता है। ऐसे व्यक्ति का वर्ण की श्रेष्ठता के कारण प्रजा स्वतः सम्मान करती है तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करती है, जबकि शूद्रवंशी राजा घृणा का पात्र होता है। इन उद्धरणों से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यदि चंद्रगुप्त क्षत्रिय नहीं होता तो चाणक्य नंदों के विनाश के लिए उसे अपना अस्त्र नहीं बनाता। वह एक शूद्र को राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठा सकता था, अतः चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानना ही सर्वथा समीचीन लगता है। प्रारंभिक जीवन। उत्पत्ति के ही समान चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन भी अंधकारपूर्ण है। उसके प्रारंभिक जीवन के ज्ञान के लिए हमें मुख्यतः बौद्ध स्रोतों पर ही निर्भर करना पड़ता है। यद्यपि वह साधारण कुल में उत्पन्न हुआ था, तथापि बचपन से ही उसमें उज्ज्वल भविष्य के सूचक महानता के सभी लक्षण विद्यमान थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्यनगर का प्रमुख था। जब वह अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई। उसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र में सुरक्षा के निमित्त पहुंचा दी गई। यहीं चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को समर्पित कर दिया गया। गोपालक ने गौशाला में अपने पुत्र के समान उसका लालन पालन किया। कुछ बड़ा होने पर उसने उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया। शिकारी के ग्राम में वह बड़ा हुआ तथा उसे पशुओं की देखभाल के लिए रख दिया गया। अपनी प्रतिभा के कारण उसने शीघ्र ही अपने समवयस्क बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली। वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी झगड़ों का फैसला किया करता था। इसी प्रकार एक दिन जब वह राजकीलम नामक खेल में व्यस्त था, चाणक्य उधर से जा निकला। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसने इस बालक के भावी गुणों का अनुमान लगा दिया। उसने शिकारी को 1000 कारशापन देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य तक्षशिला आया। तक्षशिला उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य वहाँ का आचार्य था। उसने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं तथा विद्याओं की विधिवत शिक्षा दी। अतिशीघ्र वह सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। यह युद्ध विद्या में भी पर्याप्त निपुण हो चुका था। ऐसा लगता है कि तक्षशिला में ही सैनिक शिक्षा ग्रहण करते हुए वह अपने समय के एक महान विजेता सिकंदर से मिला था तथा वह उसके सैनिक प्रशिक्षण का एक ही अंग था। इसके विषय में प्लूटार्क तथा जस्टिन जैसे लेखकों ने बड़ा ही रोचक विवरण दिया है। जस्टिन हमें बताता है कि सिकंदर उसकी अस्पष्टवादिता से बड़ा रुष्ट हुआ तथा उसे मार डालने का आदेश दिया, किंतु शीघ्रता से भागकर उसने अपनी जान बचाई। चंद्रगुप्त की उपलब्धियां। चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त करना। दूसरा, नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। यद्यपि इतिहासकारों में इस विषय में मतभेद है कि चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों से युद्ध किया अथवा मगध के नंदों का विनाश किया, तथापि यूनानी रोमन एवं बौद्ध साक्ष्यों से जो संकेत मिलते हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब तथा सिंध को ही विदेशियों की दासता से मुक्त किया था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है तथा उसे देश और धर्म के लिए अभिशाप कहा है। चंद्रगुप्त ने बड़ी बुद्धिमानी से उपलब्ध साधनों का उपयोग किया तथा विदेशियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। उसने इस कार्य के लिए एक विशाल सेना का संगठन किया। इस सेना के सैनिक अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित वर्गों से लिए गए थे। पहला, चोर अथवा प्रतिरोधक। दूसरा, म्लेच्छ। तीसरा, चोड़गण। चौथा, आटविक। पाँचवा, शस्त्रोपजीवी श्रेणी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। मैक्रिंडल के अनुसार इसे तात्पर्य पंजाब के गणजातीय लोगों से है जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण का प्रबल प्रतिरोध किया था। मुद्रा राक्षस तथा परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त को परवर्तक नामक एक हिमालय क्षेत्र के शासक से सहायता प्राप्त हुई थी। कुछ विद्वानों ने इस शासक की पहचान पोरस से की है, किंतु इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओम प्रकाश ने प्रवर्तक की पहचान अभिसार के शासक के साथ किए जाने के पक्ष में अपना मत प्रकट किया है। यह चंद्रगुप्त का सौभाग्य था कि पंजाब तथा सिंध की राजनीतिक परिस्थितियां उसके पूर्णतया अनुकूल थीं। सिकंदर के प्रस्थान के साथ ही इन प्रदेशों में विद्रोह उठ खड़े हुए तथा उन अनेक यूनानी क्षत्रप मौत के घाट उतार दिए गए। उनमें आपस में ही विद्वेष एवं घृणा की भावना बढ़ी। 325 ईस्वी पूर्व के लगभग ऊपरी सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां और बिगड़ गई तथा सिंध और पंजाब में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासन का ढांचा ढहने लगा। इन प्रदेशों में घोर अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई जिसने चंद्रगुप्त का कार्य सुगम कर दिया। इन प्रदेशों में चंद्रगुप्त की सफलता का संकेत इतिहासकार जस्टिन इन शब्दों में करता है, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सांड्रो कोट्स था। इस प्रकार जस्टिन के विवरण से ज्ञात होता है कि सिकंदर के क्षत्रपों के निष्कासन अथवा विनाश के पीछे चंद्रगुप्त का ही मुख्य हाथ था। ऐसा प्रतीत होता है कि फिलिप द्वितीय तथा सिकंदर की मृत्यु के बीच के दो वर्षों 325 से 323 ईसा पूर्व के काल में चंद्रगुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापक योजनाएं तैयार कर ली। अब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसने सर्वप्रथम एक सेना एकत्र कर अपने को राजा बनाया तथा फिर सिकंदर के क्षत्रपों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेना नायक यूडेमस भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुआ और स्थिति तक संपूर्ण सिंध तथा पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो चुका था। वस्तुतः यह उसकी सुनियोजित योजना का फल था। जस्टिन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा मेसिडोनियन क्षत्रपों के बीच भीषण युद्ध हुआ होगा तथा चंद्रगुप्त ने सिकंदर द्वारा भारत में छिड़ी गई सेना को पूर्णतया उखाड़ फेंका होगा। अतः यूडोमस ने यह बुद्धिमानी की कि चंद्रगुप्त मौर्य को बिना चुनौती दिए ही 317 ईसा पूर्व में शांतिपूर्वक भारत छोड़ दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक क्षत्र शासक था। नंदों का उन्मूलन। सिंध तथा पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर लेने के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर अग्रसर हुए। मगध में इस समय घननंद का शासन था। अपने असीम सैनिक साधनों तथा संपत्ति के बावजूद भी वह जनता में लोकप्रियता अर्जित कर सकने में असफल रहा और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था जिससे क्रुद्ध होकर उसने नंदों को समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा की थी। प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने उसके इस कार्य की तुलना मध्ययुगीन भारत के राजपूत शासक राणा संग्राम से की है जिसने इब्राहिम लोदी का तख्ता पलटने के लिए मुगल सम्राट बाबर को आमंत्रित किया था, परंतु चंद्रगुप्त अपने उद्देश्य में असफल रहा। हम देख चुके हैं कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार उसने यूनानी अधिकारियों की हत्या कर पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया। अब उसके पास एक विशाल संगठित सेना थी जिसका उपयोग उसने नंदों के विरुद्ध किया। दुर्भाग्यवश हमें किसी भी साक्ष्य से नंदों तथा मौर्यों के बीच हुए इस युद्ध का विवरण नहीं मिलता। बौद्ध तथा जैन स्रोतों से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया परंतु सफलता नहीं मिली और उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। अब उसे अपनी भूल ज्ञात हुई तथा उसने दूसरी बार सीमांत प्रदेशों की विजय करते हुए नंदों की राजधानी पर धावा बोला। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद मौर्य युद्ध बड़ा रक्तरंजित रहा होगा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंडों से इस युद्ध का बड़ा ही अतिरंजित विवरण मिलता है। इस ग्रंथ में भद्यशाल नामक नंदों के मंत्री का उल्लेख हुआ है। इसमें युद्ध के हताहतों की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है जो मात्र अलंकारिक प्रतीत होता है। इससे केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि युद्ध बड़ा घमासान तथा भयंकर रहा। अंततः घनानंद मार डाला गया और चंद्रगुप्त का मगध साम्राज्य पर अधिकार हो गया। यह उसकी दूसरी महत्वपूर्ण सफलता थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ। वह एंटिओकस का पुत्र था। बेबुलोन तथा बैक्ट्रिया को जीतकर उसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली। वह अपने सम्राट द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार में लेने का उत्सुक था। इस उद्देश्य 305 ईसा पूर्व के लगभग उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की तथा सिंध तक आ पहुंचा, परंतु इस समय का भारत सिकंदर कालीन भारत से पूर्णतया भिन्न था। अतः सेल्यूकस को विभिन्न छोटे छोटे प्रदेशों के सरदारों के स्थान पर एक संगठित भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना था। यूनानी लेखक केवल इस युद्ध के परिणाम का ही उल्लेख करते हैं। अप्पियानुस लिखता है कि सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गई तथा एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गई। स्ट्रैबो के अनुसार उस समय भारतीय सिंधु नदी के समीपवर्ती भाग में रहते थे। यह भाग पहले पारसियों के अधीन था। सिकंदर ने इसे जीतकर वहां अपना प्रांत स्थापित किया। किंतु सेल्यूकस ने इन्हें सैंड्रोकोट्स का वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप दे दिया तथा बदले में 500 हाथी प्राप्त किया। इन विवरणों से ऐसा संकेत मिलता है कि सेल्यूकस युद्ध में पराजित हुआ। फलस्वरूप चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई जिसकी शर्तें निम्नलिखित थीं। पहला, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को आर्कोसिया और पेरोनिसडाई के प्रांत तथा एरियाई एवं जेवड्रोसिया की क्षत्रपियों के कुछ भाग दिए। दूसरा, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी उपहार में दिया। तीसरा, दोनों नरेश के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, परंतु उपलब्ध प्रमाणों से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती। चौथा, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी। यह निश्चय ही चंद्रगुप्त की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इससे उसका साम्राज्य भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा तथा उसके अंतर्गत अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग भी सम्मिलित हो गया। चंद्रगुप्त के कांधार पर आधिपत्य की पुष्टि वहां से प्राप्त हुए अशोक के लेख से भी हो जाती है, क्योंकि अशोक अथवा बिंदुसार ने इस भाग की विजय नहीं की थी। भारत ने सिकंदर के हाथों ही अपनी पराजय का बदला ले लिया। इस समय से भारत तथा यूनान के बीच राजनीतिक संबंध प्रारंभ हुआ, जो बिंदुसार तथा अशोक के समय में भी बना रहा। पश्चिमी भारत की विजय। शक महाक्षत्र रुद्रदामन के गिरनाल अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सुराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और उसने वहां सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। सुराष्ट्र प्रांत के दक्षिण में सोपारा नामक स्थान से चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, परंतु अशोक अपने अभिलेख में इस प्रदेश को जीतने का दावा नहीं करता। अतः इससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सुराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक का प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही विजित किया गया था। दक्षिण भारत। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के संबंध में अशोक के अभिलेखों तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कई स्थानों से अशोक के लेख मिलते हैं, जैसे सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंगर मरेश्वर पहाड़ी, गोबीमठ, पाल्लिकी गुंड, मास्की तथा गुंटी। अशोक स्वयं अपने अभिलेखों में अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांडे, सत्यपुत्र तथा केरलपुत्र जातियों का उल्लेख करता है। उसके 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि दक्षिण में उसने केवल कलिंग की ही विजय की थी, जिसके पश्चात उसने युद्ध कार्य पूर्णतया बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक की विजय का श्रेय हमें या तो बिंदुसार को अथवा चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा। बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और इतिहास उसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं करता। अतः यही मानना तर्कसंगत लगता है कि चंद्रगुप्त ने ही इस प्रदेश की विजय की होगी। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारतीय विजय के विषय में जैन एवं तमिल स्रोतों से भी कुछ संकेत मिलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार अपनी वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी तथा दोनों श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर बस गए। यहीं चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चंद्रगुप्त तपस्या किया करता था। यदि इस परंपरा पर विश्वास किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसी स्थान पर तपस्या के लिए गया होगा जो उसके साम्राज्य में स्थित हो। इसे श्रवणबेलगोला तथा उसका अधिकार प्रमाणित होता है। तमिल परंपरा से ज्ञात होता है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण क्षेत्र में मोहर के राजा पर आक्रमण किया तथा इस अभियान में कोशर और वडग्गर नामक दो मित्र जातियों ने उसकी मदद की थी। इस परंपरा के मौर्यों का विवरण दे रहे हैं जो नंदों के उत्तराधिकारी थे। इस परंपरा में मौर्यों द्वारा तमिल प्रदेश की विजय का विवरण सुरक्षित है। यह विजय निस्संदेह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई होगी। यह यहाँ उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त जैन तथा तमिल परंपराओं को अनेक विद्वान ऐतिहासिक नहीं मानते, अतः इनमें हम बहुत अधिक विश्वास नहीं कर सकते। साम्राज्य विस्तार। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया। प्लूटार्क ने लिखा है कि उसने 6,00,000 की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। जस्टिन के विवरण से भी पता चलता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा बिंबिसार के समय से प्रारंभ हुई थी, चंद्रगुप्त के समय में वह पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सुराष्ट्र तथा सुपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखक इसे पेरोपेनिसस अथवा इंडियन काकेशस कहते थे। यही चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के साम्राज्यों की सीमा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर भारत की उस वैज्ञानिक सीमा पर अधिकार कर लिया था जिसे प्राप्त करने के लिए मुगल तथा अंग्रेज शासक व्यर्थ का प्रयास करते रहे। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। चंद्रगुप्त एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक था। एक सामान्य कुल में उत्पन्न होते हुए भी अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर वह एक सार्वभौम सम्राट के पद पर पहुंच गया। उसने देश में पहली बार एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की और वह व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए आदर्श स्वरूप बनी रही। वह एक धर्म प्राण व्यक्ति था। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया तथा भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। पहले तो चंद्रगुप्त ने स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की किंतु उसे सफलता नहीं मिली। परिणामस्वरूप वह अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व के लगभग उसने जैन विधि से उपहास पद्धति द्वारा प्राण त्याग किया। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्रवण बेलगोला की एक छोटी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कही जाती है तथा चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी है। बाद के कई लेखों में भी भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मुनि की उल्लेख मिलता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वारा जैन धर्म स्वीकार करने की बात तो सही लगती है किंतु जैन लेखकों द्वारा 12 वर्षीय अकाल का विवरण सही नहीं प्रतीत होता। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त की राज्यसभा में निवास करता था कहीं भी अकाल की स्थिति का उल्लेख नहीं करता है। अन्य किसी साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि नहीं होती। तिथिक्रम। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की विभिन्न घटनाओं का कालक्रम निर्धारित करना कठिन है। यूनानी प्रमाणों के आधार पर इस विषय पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हम देख चुके हैं कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हुई। इसके पश्चात बेबीलोन में उसके साम्राज्य का बंटवारा हो गया। उसके साम्राज्य का दूसरा विभाजन 321 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। इसमें पेरोपेनिसस यूनानी साम्राज्य का सबसे पूर्वी प्रदेश माना गया था तथा यहाँ सिंधु नदी के पूर्व किसी भी प्रदेश का उल्लेख नहीं मिलता। इसे ऐसा लगता है कि 321 ईसा पूर्व तक यूनानियों का अधिकार सिंधु क्षेत्र में न रहा। हम यह भी जानते हैं कि इस क्षेत्र में यूनानियों के निष्कासन में चंद्रगुप्त का ही मुख्य हाथ था। अतः ऐसा माना जा सकता है कि 323 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त ने अपने को पंजाब तथा मगध का शासक बना लिया होगा। उसके राज्यारोहण की संभावित तिथि 322 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। पुराणों के अनुसार उसने 24 वर्षों तक शासन किया। अतः उसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व के लगभग हुई होगी। इस प्रकार हम चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व के लगभग से 298 ईसा पूर्व तक मोटे तौर से सही मान सकते हैं। 322 ईसा पूर्व की तिथि का समर्थन चीन के कैंटन में रखे हुए लेख जिसे बिंदुओं का लेख कहा जाता है से भी हो जाता है। इसमें बिंदुओं का प्रारंभ महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से प्रारंभ होकर 489 ईस्वी में एक वर्ष का अंतर मान लिया जा तो तदनुसार महानिर्वाण की तिथि ईसा पूर्व होगी। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि महापरिनिर्वाण के 218 वर्षों बाद अशोक का अभिषेक हुआ तथा यह उसके सिंहासन पर बैठने के 4 वर्षों बाद संपन्न हुआ था। इस दृष्टि से अशोक के सिंहासन पर बैठने की तिथि 273 ईसा पूर्व तथा उसके अभिषेक की तिथि 269 ईसा पूर्व आती है। पुराण चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार के शासन अवधि क्रमशः 24 तथा 25 वर्ष बताते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रगुप्त का राज्यारोहण 273+49 322 ईसा पूर्व में हुआ। मूल्यांकन। चंद्रगुप्त की उपलब्धियों को देखने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा अत्यंत कुशल प्रशासक था। एक सामान्य कुल में उत्पन्न होते हुए भी उसने अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर अपने को एक सार्वभौम सम्राट बना लिया। वह भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था जिसके नेतृत्व में चक्रवर्ती आदर्श को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया। यदि यूनानी स्रोतों पर विश्वास किया जाए तो कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त की महान सफलता अधिकांशतः उसकी वीरता, अदम्य उत्साह एवं साहस का ही परिणाम था। जब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त के पीछे कोई राजकीय परंपरा नहीं थी तो उसकी उपलब्धियों का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। ईरानी दास्ता से देश को मुक्त करना, शक्तिशाली नंदों का विनाश करना तथा अपने समय के एक अत्यंत उत्कृष्ट सेनानायक सेल्यूकस को नतमस्तक करना निश्चित रूप से चंद्रगुप्त की असाधारण सैनिक योग्यता के परिचायक हैं। जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है कि उसने भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को अधिकृत कर लिया जिसके लिए मुगल तथा ब्रिटिश शासक व्यर्थ का प्रयास करते रहे। चंद्रगुप्त एक वीर योद्धा एवं साम्राज्य निर्माता ही नहीं था अपितु अत्यंत योग्य शासक भी था। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को जो कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कही जा सकती है, बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा उसके गुरु एवं प्रधानमंत्री कौटिल्य की राजनीतिक सूझबूझ का ही परिणाम थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त एक निपुण तथा लोकोपकारी शासन व्यवस्था का निर्माता था। उसका शासनादर्श बाद के हिंदू शासकों के लिए अनुकरणीय बना रहा। यहाँ तक कि मुस्लिम तथा ब्रिटिश शासकों ने भी राजस्व व्यवस्था, नौकरशाही तथा पुलिस व्यवस्था के क्षेत्रों में मौर्य शासन के प्रतिमानों का ही अनुकरण किया। मौर्य प्रशासन के अधिकांश आदर्शों को आधुनिक युग के भारतीय प्रशासन में भी देखा जा सकता है। चंद्रगुप्त ने अपने व्यक्तित्व एवं आचरण से कौटिल्य के प्रजाहित के राजादर्श को कार्य रूप में परिणित कर दिया। उसकी सफलताओं ने भारत को विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर प्रतिष्ठित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वारा विदेशी कन्या से विवाह करना भारत के तत्कालीन सामाजिक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इससे उसके मस्तिष्क की उदारता सूचित होती है। यदि जैन परंपरा में विश्वास किया जाए तो कहा जा सकता है कि वस्तुतः चंद्रगुप्त एक राजर्षि था जिसने अपने उत्तरकालीन जीवन में राज्य के सुख वैभव का परित्याग कर तप करते हुए स्वेच्छा से मृत्यु का वरण किया। कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का सर्वप्रथम हाथ रहा है। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथों से उसके जीवन के विषय में जो सूचना मिलती है उससे स्पष्ट होता है कि वह तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। वह वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता था और तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य था, परंतु वह स्वभाव से अत्यंत रूढ़िवादी तथा क्रोधी था। पुराणों में उसे द्विजहर्षभ कहा गया है। कहा जाता है कि एक बार नंद राजा ने अपनी यज्ञशाला में उसे अपमानित किया जिससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना अस्त्र बनाकर उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुआ। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार के समय में भी चाणक्य कुछ काल तक प्रधानमंत्री बना रहा। बाद में उसने शासन कार्य त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया तथा वन में तपस्या करते हुए उसने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए। वह राजनीति शास्त्र का प्रकांड पंडित था तथा उसने राजशासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह हिंदू राजशासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। दुर्भाग्यवश अर्थशास्त्र के रचनाकाल का तथा उसके रचयिता के विषय में बड़ा भारी मतभेद रहा है। जाली, कीथ, विंटर, नीत्श जैसे कुछ विद्वान इसे कौटिल्य की रचना नहीं मानते। इसके विपरीत श्याम शास्त्री, जैकोबी स्मिथ, काशी प्रसाद जायसवाल आदि इस ग्रंथ को कौटिल्य की ही कृति मानते हैं। जो विद्वान अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना स्वीकार नहीं करते उनके मुख्य तर्क इस प्रकार हैं। पहला, अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता जबकि यूनानी साक्ष्य इसके विस्तार से प्रकाश डालते हैं। दूसरा, यह नगर प्रशासन तथा सैनिक प्रशासन की परिषदों का कोई उल्लेख नहीं करता। इसमें विदेशी नागरिकों के आचरण तथा उनकी देखरेख के लिए भी कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं। तीसरा, इस ग्रंथ में कौटिल्य के विचार अन्य पुरुष इति कौटिल्य में व्यक्त किए गए हैं। यदि कौटिल्य स्वयं इस ग्रंथ का रचयिता होता तो इस प्रकार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चौथा, कौटिल्य के नाम का उल्लेख मेगास्थनीज नहीं करता जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। इस प्रकार उसकी ऐतिहासिकता ही संदिग्ध है। पतंजलि ने भी जो मौर्य शासन से परिचित थे उसका नामोल्लेख नहीं किया है। यदि हम गहराई से उपर्युक्त तर्कों की समीक्षा करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि उनमें कोई बल नहीं है। हम कौटिल्य की ऐतिहासिकता एवं अर्थशास्त्र को उसकी रचना होने के पक्ष में निम्नलिखित बातें करते हैं। पहला, अर्थशास्त्र एक असंप्रदायिक रचना है जिसका मुख्य विषय सामान्य राज्य एवं उसके शासन तंत्र का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट का अधिकार क्षेत्र हिमालय से लेकर समुद्र तट तक बताया गया है जो इस बात का सूचक है कि कौटिल्य विस्तृत साम्राज्य से परिचित था। दूसरा, अर्थशास्त्र मुख्यतः विभागीय अध्यक्षों का ही वर्णन करता है। नगर तथा सेना की परिषदों के स्वरूप का अशासकीय होने के कारण इसमें उल्लेख नहीं मिलता। तीसरा, भारतीय लेखकों में अपने नाम का उल्लेख अन्य पुरुष में करने की प्रथा रही है, अतः यदि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अपना उल्लेख अन्य पुरुषों में किया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह स्वयं इस ग्रंथ का रचयिता नहीं था। चौथा, मेगास्थनीज का संपूर्ण विवरण हमें उपलब्ध नहीं होता। संभव है कौटिल्य का उल्लेख उन अंशों में हुआ जो अपर्याय है। पतंजलि ने बिंदुसार और अशोक के नाम का उल्लेख भी नहीं किया है, तो क्या इन दोनों को अनैतिहासिक माना जा सकता है? उनका उद्देश्य पाणिनि तथा कात्यायन के सूत्रों की व्याख्या करना था, न कि इतिहास लिखना। पांचवा, कौटिल्य जिस समाज का चित्रण करता है उसमें नियोग प्रथा, विधवा विवाह आदि का प्रचलन था। यह प्रथा मौर्ययुगीन समाज में थी। उसने युक्त शब्द का प्रयोग अधिकारी के अर्थ में किया है। यही शब्द अशोक के लेखों में भी आया है। इसमें मद्र, कंबोज, लिच्छवी, मल्ल आदि गणराज्यों का भी उल्लेख हुआ है, जो इस बात के सूचक हैं कि यह ग्रंथ मौर्य युग के प्रारंभ में लिखा गया था। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में बौद्धों के प्रति भी बहुत कम सम्मान प्रदर्शित किया गया है तथा लोगों को अपने परिवार के पोषण की व्यवस्था किए बिना संन्यास ग्रहण करने से रोका गया है। इससे यह सूचित होता है कि बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के पूर्व ही यह ग्रंथ लिखा गया था। छठा, यहाँ उल्लेखनीय है कि कौटिल्य तथा मेगास्थनीज के विवरणों में कई समानताएं भी हैं। मेगास्थनीज के समान कौटिल्य भी लिखता है कि जब चंद्रगुप्त आखेट के लिए निकलता था तो उसके साथ राजकीय जुलूस चलता था तथा सड़कों की कड़ी सुरक्षा रखी जाती थी। दोनों हमें बताते हैं कि सम्राट की अंगरक्षक महिलाएं होती थीं तथा वह अपने शरीर का मालिश करवाता था। मेगास्थनीज के ओवरसियर्स अर्थशास्त्र के गुप्तचर हैं। इसी प्रकार मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित कुछ अधिकारी अर्थशास्त्र के अध्यक्षों से मिलते जुलते हैं। सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप अधिकांश अंशों में समानता रखता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है तथा इसमें चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य के ही विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। कालांतर में अन्य लेखकों द्वारा इस ग्रंथ में कुछ प्रक्षिप्तांश जोड़ दिए गए हैं जिससे मूल ग्रंथ का स्वरूप परिवर्तित सा हो गया है। अतः मूल ग्रंथ को हम चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में रख सकते हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रंथ के अंत में कहा गया है कि इसकी रचना उस व्यक्ति ने की है जिसने क्रोध के वशीभूत होकर शस्त्र शास्त्र तथा नंदराज के हाथ में गई हुई पृथ्वी का शीघ्र उद्धार किया। कौटिल्य द्वारा नंदों का विनाश एक ऐसी ऐतिहासिक परंपरा है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः अर्थशास्त्र को उसकी रचना मानने में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। श्याम शास्त्री के अनुसार वर्तमान ग्रंथ में भी इतने ही श्लोक हैं। प्रथम अधिकरण में राजस्व संबंधी विविध विषयों का वर्णन है। द्वितीय अधिकरण में नागरिक प्रशासन की विशद विवेचना की गई है। तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरणों में दीवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख किया मिलता है। पंचम अधिकरण के अंतर्गत सम्राट के सभासदों एवं अनुचरों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख है। छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांगों, स्वामी, अमत्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन किया गया है। अंतिम नौ अधिकरण राजा की विदेश नीति, सैनिक अभियान, युद्ध में विजय के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, युद्ध तथा संधि के अवसर आदि विविध विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र मुख्यतः शासन की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित रचना है। कौटिल्य के शासन का आदर्श बड़ा ही उदात्त था। उसने अपने ग्रंथ में जिस विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया है उसमें प्रजा का हित ही राजा का चरम लक्ष्य है। वास्तव में यह ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के ज्ञान के लिए बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार है। कौटिल्य मात्र राजनीति विशारद ही नहीं था, अपितु वह राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक नए सिद्धांत का प्रतिपादक भी था। बाद के लेखकों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उसके नाम का उल्लेख किया है। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि का अष्टाध्यायी का है। मेगास्थनीज और उसकी इंडिका। मेगास्थनीज सेलिकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेलिकस का राजदूत रह चुका था। संभवतः वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। दुर्भाग्यवश वह ग्रंथ अपने मूल रूप में आज प्राप्त नहीं है, तथापि उसके अंश उद्धरण रूप में बाद के अनेक यूनानी रोमीय लेखकों एरियन अस्ट्रेबो पिलनी की रचनाओं में मिलते हैं। अस्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। यह सत्य है कि मेगास्थनीज का विवरण पूर्णतया प्रमाणिक नहीं है। एक विदेशी तथा भारतीय भाषा रीति रिवाज एवं परंपराओं को न समझ सकने के कारण उसने यत्र तत् अनर्गल बातें लिख डाली, परंतु केवल इसी आधार पर हम उसे पूर्ण रूप से झूठा नहीं कह सकते। उसके विवरण का ऐतिहासिक मूल्य है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी, जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि बड़ी उर्वर थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे तथा सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय साहसी वीर तथा सत्यवादी होते थे, उनकी वेशभूषा सादी होती थी, गेहूं तथा जौ प्रमुख खाद्यान्न थे। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते हैं, वस्तुतः इससे शिव तथा कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र की काफी प्रशंसा की है। वह लिखता है कि गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। यह 80 स्टेडिडा लंबा तथा 15 स्टेडिडा चौड़ा था। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा था जिसमें 64 तोरण बुर्ज थे। नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। नगर के मध्य चंद्रगुप्त का विशाल राजा प्रसाद स्थित था। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एक बतना के राजमहल भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य सम्राट की कर्मठता तथा कार्य कुशलता की सूचना मिलती है। वह लिखता है कि राजा सदा प्रजा के आवेदनों को सुनता रहता था। दंड विधान कठोर था, अपराध बहुत कम होते थे, जबकि सामान्यतः लोग घरों तथा संपत्ति की रखवाली नहीं करते थे। सम्राट अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता था। मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य युगीन भारत में व्यापार व्यवसाय के भी काफ़ी विकसित दशा में होने का संकेत मिलता है। उसने व्यापारियों के एक बड़े वर्ग का उल्लेख किया है जिसका समाज में अलग संगठन था। इस प्रकार मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा पर कुछ प्रकाश पड़ता है।